प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं। जापान के हिरोशिमा में G7 समिट है तो पापुआ न्यू गिनी में इंडिया पैसिफिक आइलैंड्स कोऑपरेशन समिट में पीएम भाग लेंगे। पीएम के इस दौरे खासकर एशिया प्रशांत के देश पापुआ न्यू गिनी की यात्रा की क्या अहमियत है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, पापुआ न्यू गिनी में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है, क्या अहमियत है पीएम मोदी के यहाँ के दौरे की?
आपने बिल्कुल सही कहा कि पापुआ न्यू गिनी के लिए ये भारत के प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। हाँ, हालांकि 2016 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी वहां जरूर गए थे। उसके अलावा अक्सर ऐसी भी सोच है विशेषज्ञों की कि ये जो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के छोटे छोटे टापुओं के देश हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बिल्कुल हाशिए पर हैं एक तरह से, तो किसी भी देश की, भारत की इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है। तो जाहिर है कि पूरे हिंद प्रशांत जो क्षेत्र में एक तरह से भू राजनीति को लेकर भैंस छिड़ी हुई है, उसके पीछे चीन के उदय की बात है कि चीन का प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में बढ़ा है और उसके चलते एक हद तक चीन का जो रवैया है वो बहुत से दूसरे देशों को, खासकर पश्चिम के कुछ देशों को जो बड़ी महाशक्तियां हैं, उनको पसंद नहीं है। उसमें फर्क केवल ये है कि 20वीं शताब्दी में दूसरे विश्व युद्ध के बाद से, जब पश्चिमी देशों का, अमेरिका का पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबदबा रहा, तो हिंद प्रशांत सागर में उसकी आसियान देशों से, जो दक्षिण पूर्व देशों से मैं बात कह रहा हूँ, तो उनसे बड़ा अच्छा एक तरह से हिस्सेदारी थी, साझेदारी थी। इसको लेकर के कॉम्युनिज्म पर थोड़ा अंकुश लगा रहना चाहिए और उस पर सीधा इशारा चीन पर था। अब 90 के दशक के अंत में जब ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आई और चीन ने उनकी सहायता की, तो चीन उनका दोस्त बन चुका है। तो मोटे तौर पर अमेरिका आज चीन पर अंकुश लगाने के लिए जो बड़ी महाशक्तियां हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, इनको साथ लेकर कोशिश कर रहा है कि किस तरह से जो पूरे क्षेत्र का आधारभूत ढांचा है सुरक्षा को लेकर, विकास को लेकर, वो इस तरह से बनाया जाए कि चीन पर अंकुश लगाया जा सके। अब चीन के पास इसमें सीधा विकल्प ये है कि उन देशों में दोस्ती और प्रभाव बढ़ाए, यहाँ पश्चिमी देशों की दोस्ती और प्रभाव कम है। तो इसीलिए ये जो हम बात कर रहे हैं कि जो दक्षिण प्रशांत सागर में टापू के देश हैं, यहाँ पापुआ न्यू गिनी भी सबसे बड़ा देश है वहां का, तो चीन का उस पूरे क्षेत्र में प्रभाव बढ़ता रहा है लगातार, और उसका व्यापार आप देखें कि 90 के दशक से करीब 15 करोड़ से आज बढ़कर 5 या 5.5 अरब डॉलर हो चुका है इस क्षेत्र में। तो उसके पीछे ठोस हिस्सेदारी के पीछे ठोस जो उसका ताकत है वो ये व्यापार की और निवेश की, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सब देशों को जोड़ता जा रहा है। पर पिछले साल अगस्त में एक देश वहां सोलोमन आइलैंड्स का है, उसके साथ सुरक्षा संधि जब चीन की हुई तब पश्चिमी देशों को चौंकाना होना पड़ा और उन्होंने कहा कि हमें आगे बढ़कर इन देशों से अपनी तालमेल बढ़ाई जानी चाहिए, दोस्ती बढ़ानी चाहिए। और चूंकि भारत भी एक तरह से पश्चिमी देशों से तालमेल बना के रखता है और खासकर हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो नई भू राजनीति है उसमें भारत लगातार पश्चिमी देशों से जुड़ा हुआ नजर आता है, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से मिलकर एक क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग बना हुआ है। तो शुरू में ऐसा लगा कि भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि पापुआ न्यू गिनी जब जाएंगे तो वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आने वाले हैं, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हिपकिंस भी आने वाले हैं, तो ऐसा सोच बनी कि शायद ये पश्चिमी देशों के साथ मिलकर भारत वहां प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे मंशा है कि चीन पर अंकुश लगाया जाए। पर अब तो राष्ट्रपति बाइडेन की यात्रा रद्द हो चुकी है, तो इसलिए अब ये सीधा मुझे लगता है कि भारत का जो क्या रवैया है पूरे इस क्षेत्र को लेकर और खासकर क्या रिश्ते बनाना चाहता है पापुआ न्यू गिनी को लेकर, उस पर पूरा अब मुझे लगता है कि ध्यान केंद्रित है। और उसमें जाहिर है कि भारत इन देशों के लिए बहुत ही आकर्षण वाला देश है, जो हमारी तकनीक है, समझ है, वो इन देशों के फायदे में आ सकती है। और आखिरी बात मैं जोड़ दूं इसमें, इन देशों को भी अभी कुछ समय से लगने लगा है कि चीन या अमेरिका जो बड़ी शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, वो अपने राष्ट्रहितों को साधने के लिए और आपस में जो उनकी खींचातानी है, तनाव है, उसकी वजह से इस क्षेत्र में, इन छोटे टापुओं में आकर अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो भारत जो है वो उस तनातनी में नहीं नजर आ रहा इस वक्त, ना तो वो चीन की वजह से जा रहा है कि उसका दोस्त है, ना इसलिए कि अमेरिका का दोस्त है। भारत अपने राष्ट्रहितों को आगे बढ़ाकर उनसे दोस्ती बनाने जा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि ये राष्ट्रपति बाइडेन की यात्रा रद्द होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा जो पापुआ न्यू गिनी में है, उसमें मुझे लगता है कि भारत को अपना योगदान करने में, अपना दृष्टिकोण साझा करने में और भी अच्छे एक तरह के अवसर वहां तैयार होने वाले हैं।
यही किस तरह के अवसर हो सकते हैं चीन का, जैसे आपने कहा कि इस देश में काफी प्रभाव हो चुका है, फ्री ट्रेड डील हो चुकी है उसकी, इसके साथ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वो काफी निवेश भी कर चुका है। ऐसे में भारत इसका मुकाबला कैसे कर सकता है? भारत की इस क्षेत्र के देशों के साथ संबंध बढ़ाने की ये जो कोशिश हो रही है, ये कितनी अहम है और इससे क्या फायदा हो सकता है?
हिंद प्रशांत जो भू राजनीति को लेकर बहस छिड़ी हुई है, उसमें जाहिर है कि भारत एक अहम योगदान देता रहा है और उससे अपेक्षा भी है कि देता रहेगा। इसलिए ये जो दक्षिण प्रशांत सागर में कुछ 14 टापू देश हैं और 7 टेरिटरीज हैं वहां, वो भी इसी का हिस्सा हैं। और जैसे भारत न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, दक्षिण पूर्व आसियान के देशों से लगातार अपनी लुकिस्ट पॉलिसी से और फिर एक्टिस्ट पॉलिसी से जोड़ता रहा है, तो उसी का हिस्सा है ये कि आज भारत ये जो दक्षिण प्रशांत क्षेत्र के छोटे देश हैं उनसे भी अपनी दोस्ती बढ़ाना चाहता है, रिश्ते बढ़ाना चाहता है। और उसमें ये साफ करना जरूरी हो जाता है कि ना तो वो चीन पर अंकुश लगाने के लिए और ना चीन के साथ बढ़कर दोस्ती दिखाने के लिए, और ठीक वैसे ही ना दोस्ती अमेरिका से बढ़ाने के लिए, ना अमेरिका पर रोक लगाने के लिए, भारत अपने राष्ट्रहितों की वजह से, अपनी जो उसकी सोच है कि हिंद प्रशांत सागर में इस पूरे क्षेत्र में किस तरह से संतुलन, संयम, ठहराव, विकास होना चाहिए, उस सोच को लेकर आगे बढ़ रहा है। और मैंने जैसे कहा अभी, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, जलवायु का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, एजुकेशन का क्षेत्र हो, ग्रीन टेक्नोलॉजी जो भारत में अब बहुत उस पर बात छिड़ी हुई है, जब ब्लू इकोनॉमी की बात छिड़ी हुई है, इन सब को लेकर भारत सक्षम है कि इन देशों में जाकर योगदान कर सकता है। और इन देशों को, जैसे मैंने कहा कि जो असमंजस में है कि क्या अमेरिका और चीन अपने आपसी तनाव की वजह से उनसे दोस्ती कर रहे हैं, ये चिंता उनको भारत को लेकर बिल्कुल नहीं है। हाल ही में राष्ट्रपति बाइडेन जब 3 घंटे के लिए जाने वाले थे पापुआ न्यू गिनी, तो 2 बड़ी सुरक्षा संधियों पर हस्ताक्षर होने की तैयारी हो रही थी, तो उसको लेकर कुछ वहां एक तरह से क्रिटिसिज्म भी सामने आना शुरू हुआ और कुछ चिंता भी कुछ वहां के नेताओं ने जताई कि ये कहीं वो चीन और अमेरिका के आपसी होड़ की वजह से हम तो नहीं उसमें जुड़ते जा रहे। और जब वो यात्रा रद्द हो गई तो वो बातें अब थोड़ा खुलकर और सामने आनी शुरू हो गई है। पर भारत के बारे में ऐसा कोई चिंता नहीं है इन देशों को, उनको लगता है कि भारत से उनको कोई इस तरह का खतरा नहीं है कि उनको किसी तरह का नुकसान पहुंचेगा। अमेरिका आप देखें कि 50, 60, 70 के दशक में अपने परमाणु विस्फोट भी इस क्षेत्र में करता रहा है, जिसका भी काफी नकारात्मक असर उनको झेलना पड़ा, अभी तक भी है। तो थोड़ा सा जो इन देशों, ये अछूते एक तरह से देश हैं, बहुत सुंदर हैं, और इनको लगता है कि पूरा विश्व जिस तरह से तेजी से जुड़ता जा रहा है और महाशक्तियों का आपस में जो खींचातानी है उसमें उनको हिस्सेदार बनाने की कोशिश हो रही है, ये भारत एक तरह से उनके लिए अवसर है और ये भारत के लिए भी अवसर है कि जब हिंद प्रशांत सागर में पूरे क्षेत्र में अपने योगदान को आगे बढ़ाना चाहता है भारत, तो ये छोटे देशों के साथ उसका बहुत अच्छा तालमेल बन सकता है। और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति बाइडेन की यात्रा रद्द होने से जो पूरा
फोकस है, भारत
पर, जो फोकस है वो भारत पर हो जाएगा।
बात करें हिरोशिमा में हो रहे G7 समिट की, पीएम मोदी यहां जाने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इस बार भारत यहां G20 के अध्यक्ष देश के रूप में शामिल हो रहा है, ऐसे में क्या अहमियत रहेगी इसकी?
दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं भारत के प्रधानमंत्री का इस शिखर सम्मेलन में होने का। सबसे पहले तो जैसे आपने कहा कि जो G20 की अध्यक्षता भारत इस वक्त कर रहा है, उसमें जब सितंबर में शिखर सम्मेलन भारत में होगा तो किस तरह का तालमेल बनाया जा सकता है, उसके लिए भारत के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि G7 और उसके साथ स्पेशल इन्वाइटी कुछ देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया भी है और ऑस्ट्रेलिया G20 में भी आता है, तो इन सब देशों से बैठकर तालमेल और किन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, सहमति बननी चाहिए, ये मौका मिलेगा। दूसरा, उसके अलावा जैसे आपने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है हिरोशिमा शहर में, और हिरोशिमा शहर में एक बहुत ये कहें कि सांकेतिक तौर पे दुनिया उसको देखती है कि जो एटॉमिक बम था उसका पहला इस्तेमाल हिरोशिमा पर हुआ था, और वहां के जो मेयर हैं वो पूरे विश्व के मेयर्स को लेकर एक परमाणु अस्त्रों के निशस्त्रीकरण की बात लगातार करते रहे हैं। तो हिरोशिमा एक सिंबल है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को लेकर, और जैसा आपने देखा कि जो G7 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष हैं उन्होंने वहां जाकर श्रद्धांजलि अपनी दी और उनकी तस्वीरें मीडिया में आई हैं। तो कुछ हद तक इस वजह से फोकस जो डिस्कशन का है वो निशस्त्रीकरण पर चला जाता है, जबकि G7 का एजेंडा निशस्त्रीकरण नहीं है। तो भारत को ये जो महाशक्तियां हैं ये किस नजर से देखती हैं, ये भारत को भांपने का समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि ज्यादातर देश आज भारत को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट विद न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एक जामा पहनाती है, ऐसा कहती है कि भारत को न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं है पर रिस्पॉन्सिबल स्टेट विद न्यूक्लियर वेपन है। तो जब बातचीत होती है इस तरह के न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन पर तो ये इनका क्या रवैया है भारत को लेकर, इसलिए क्योंकि आप देखें कि पिछले इतने 8-10 साल में भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो बहुत उभर कर सामने आई है, इन देशों को भारत की जरूरत है आज, तो क्या उनके व्याख्यानों में उनकी बातों में शब्दावली में बदलाव आता है या नहीं आता, ये देखने का भारत को मौका मिलेगा एक तरह से। और मुझे लगता है कि जो मेजबान देश है उसके लिए एक तरह से परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि आप यदि देखें कि सेशंस जो शिखर सम्मेलन G7 का है उसमें बिल्कुल अलग ध्यान केंद्रित है इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर, पर जो मीडिया में खबरें उछल कर आ रही हैं वो परमाणु निशस्त्रीकरण को लेकर हैं, और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की वहां जाने वाले हैं तो क्या पूरा ध्यान ये यूक्रेन युद्ध पर होने वाला है, तो मेजबान देश के लिए मुश्किल हो जाता है कि एजेंडा सेटिंग कैसे करें और सहमति किस पे बने और बाद में किस तरह की जो घोषणा पत्र निकलेगा उसमें क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा। तो एक तरह से उसमें भी मुझे लगता है कि भारत को अपना योगदान देने की और सभी देशों में आपस में तालमेल बनाकर कि किस पर बातचीत होनी चाहिए ये भारत को मौका मिलेगा, और भारत का ध्यान बिल्कुल आर्थिक मुद्दों पर है क्योंकि अभी तो G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है भारत, पर भारत हमेशा से कहता रहा है कि G7 देशों का जो मैंडेट है उनका जो कारण है एकजुट होने का वो यही है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड्स जो हैं, ग्लोबल मार्केट है उसमें संयम संतुलन किस तरह से बनाया जाए वो ध्यान होना चाहिए, और इस तरह से बेवजह ये जो जियोपॉलिटिक्स की तरफ रेटोरिक चला जाता है उससे बचना चाहिए। और आखिरी छोटी सी बात इसमें जोड़ दूं मैं, यदि ज़ेलेंस्की जैसे कहा जा रहा है कि वो आएंगे और उनकी ऐसा भी कहा जा रहा है कि बायलैटरल बातचीत भी प्रधानमंत्री मोदी से होने वाली है
जी,
अब इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों में जो वहां इस वक्त हिरोशिमा में है, अकेला भारत एक देश है जिसने रशिया को कंडम नहीं किया है। तो यूक्रेन, हालांकि भारत ने लगातार जमीन पर यूक्रेन को सहायता पहुंचाने की कोशिश की है और लगातार वो सहायता सामग्री जाती रही है यूक्रेन में, पर ये सीधी बातचीत जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होती है तो क्या उनका रुख और रवैया और किस तरह का तालमेल बनता है, क्योंकि एक इससे पहले जो राष्ट्रपति पुतिन से प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये आज का युग युद्ध का युग नहीं है, पूरे विश्व में ये फ्रेज पॉपुलर हुआ और बहुत से दूसरे आधा दर्जन अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने अपने भाषणों में इसका इस्तेमाल किया। G20 की बाली शिखर सम्मेलन के घोषणा पत्र में इसका जिक्र हुआ। अब जब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से भारत के प्रधानमंत्री बात करते हैं तो क्या कुछ ऐसी सोच वहां से भी निकलेगी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता जिसको मिलेगी और भारत की जो साख है वो और आगे बढ़ेगी?
जी, तो पीएम मोदी की इस अहम यात्रा के दौरान इस अहम मुलाकात पर भी सबकी नजर रहेगी। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।